अरुणिमा आस्तिक के कपड़ों पर प्रेस करते हुए किसी पुराने फिल्मी धुन का गाना गुनगुना रही थी। तभी एकाएक उसकी नज़र बेड पर जाती है, जहां पर आस्तिक उठकर बैठा हुआ था और उसको ही देख रहा था। ये देखते ही अरुणिमा के हाथ रुक जाते हैं। आस्तिक देखता है कि अरुणिमा के चेहरे पर अब तक जो हल्की मुस्कान थी वो गायब हो चुकी है। वो अब कोई गाना नहीं गुनगुना रही है और उसके चेहरे पर घबराहट आ गई है। अरुणिमा जल्दी से प्रेस को रखकर आस्तिक की तरफ आती है। उसके चेहरे पर डर अभी भी बरकरार था। वो आस्तिक के पास आती है और बेड के सामने खड़े होते हुए किसी आज्ञाकारी नौकर की तरह कहती है, आपको कुछ चाहिए राजा साहब? क्या मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी लेकर आऊँ, या फिर आप गर्म पानी पियेंगे? मैं उसमें शहद भी डाल दूंगी, या फिर मैं आपका नाश्ता यहीं ले आऊँ। आस्तिक देख पा रहा था कि अरुणिमा उसे ये सब कहते हुए कितनी डर रही है। उसकी सांसें तेज़ी से चल रही हैं, जैसे कि वो कोई गलती कर देगी। उसका शरीर भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। आस्तिक अपनी तीखी नज़रों से अरुणिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते जा रहा था, और अचानक ही उसकी नज़रें अरुणिमा की नज़रों में देखने लगीं। आस्तिक अरुणिमा की आंखों में अपने लिए नफ़रत, घृणा और तिरस्कार साफ देख पा रहा था। आस्तिक अपने मन में कहता है, इसकी नज़रों में मेरे लिए सिर्फ नफ़रत ही हो सकती है। माँ सही कहती थी, ऐसी लड़कियाँ कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। ऐसी लड़कियाँ सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। क्या सच में आस्तिक को ऐसा कहने का हक था जो उसने अरुणिमा के साथ किया? उसके बाद क्या वो अरुणिमा से अपने लिए प्यार की, हमदर्दी की उम्मीद रख सकता है? लेकिन फिर भी आस्तिक का एक ज़िद्दी मन उसे यही कह रहा था कि अरुणिमा उसकी पत्नी है, चाहे हालात जैसे भी हों, अरुणिमा को उससे प्यार करना ही चाहिए। आस्तिक ने अपने मन में सोचा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ प्यार से पेश आना होगा और हमेशा मुझसे ही प्यार करना होगा, जैसे मेरी माँ ने किया था। मेरी माँ ने भी ऐसे ही दर्द सहे थे, लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं हुआ था। तो तुम्हारी आंखों में ये नफ़रत क्यों है? तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। आस्तिक ने आगे बढ़कर अरुणिमा के हाथ पकड़ लिए, और ये होते ही अरुणिमा का पूरा शरीर एकदम से कांप गया। वो हैरान नज़रों से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक अपनी आंखें छोटी करते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरुणिमा दो मिनट तो समझ ही नहीं पाई कि आस्तिक क्या कह रहा है। फिर जाकर उसे होश आया कि आस्तिक उसे अपने सर दर्द के बारे में कह रहा है। अरुणिमा जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। अरुणिमा आस्तिक से अपने हाथ को छोड़ने के लिए कहती है। आस्तिक एक झटके से अरुणिमा का हाथ छोड़ देता है, और अरुणिमा अपने हाथों को सहलाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और वहां से तेल की शीशी लेकर आती है। अरुणिमा आस्तिक के पास आती है और बेड पर उसके पीछे जाकर बैठ जाती है। वो धीरे से अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लेती है और आस्तिक के सर पर लगाकर उसकी मालिश करने लगती है। आस्तिक के चेहरे पर सुकून था। अरुणिमा धीरे धीरे उसके सर पर मालिश कर रही थी, और आस्तिक को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर अरुणिमा के एक हाथ को पकड़ लिया। अरुणिमा हैरान हो गई और वो एक पल के लिए कांप भी गई थी, लेकिन उसने अपने दूसरे हाथ से आस्तिक के सर पर मालिश करना जारी रखा। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के हाथ को आगे लाता है और उसकी कलाइयों को धीरे से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं। अरुणिमा आस्तिक की कहीं बातें समझ ही नहीं पा रही थी। आस्तिक को कुछ हो गया है क्या? क्या उसके सर पर चोट लगी है? वो कभी कभी बहकी बहकी बातें करता है। आस्तिक अरुणिमा के हाथों को पकड़ते हुए अपने गालों पर लाता है और उसके हाथ अपनी गाल पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो अरुणिमा के स्पर्श को महसूस करने लगता है। तभी आस्तिक के जहन में विशाल की बात आती है, जब उसने कहा था कि अरुणिमा भी उसे पसंद करती है, और फिर वो तस्वीर जिसमें वो और अरुणिमा एक दूसरे के करीब थे। अरुणिमा और आस्तिक की शादी में विशाल ने जो हरकत की थी, उसके बाद भले ही आस्तिक ने विशाल को सजा दे दी थी, लेकिन उसकी बातें हमेशा आस्तिक के दिमाग में घुमा करती थीं, और यही बात थी कि आस्तिक कभी भी अरुणिमा पर विश्वास नहीं कर पाया। अचानक से आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई पर अपनी पकड़ तेज कर दी। अरुणिमा एकदम से चीख पड़ी। आस्तिक गुस्से भरी नजरों से पलटकर अरुणिमा को देखता है और कहता है, उस विशाल ने भी तुम्हारे इसी हाथ को पकड़ा होगा ना? अरुणिमा दर्द से तड़पते हुए आस्तिक को देख रही थी और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। उसने कराहते हुए कहा, राजा साहब, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आस्तिक झटके से बेड से खड़ा होता है और अरुणिमा के सामने आते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? याद दिलाऊं, तुम्हारा वो यार जिसने हमारी शादी में आकर ये कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। अरुणिमा अपनी कलाई को सहलाते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब, वो झूठ बोल रहा है। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ और उसने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया है। हाँ, एक बार कॉलेज फ्रेशर पार्टी में उसने मुझे छूने की कोशिश जरूर की थी, पर बदले में मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया था। आस्तिक आगे आता है और अरुणिमा के बाजू को अपने हाथों में पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, झूठ बोल रही हो तुम, सब झूठ बोल रही हो। देखा था मैंने, जब शादी वाले दिन मैं उस विशाल को मार रहा था तो कैसे तड़प रही थी तुम उसे बचाने के लिए। अरुणिमा के आंसू निकल आए थे, उसने रोते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि मैं किसी को पिटता हुआ नहीं देख सकती थी। मार, पिटाई और खून खराबे से मुझे बहुत डर लगता है और मैं इन सब चीजों से दूर रहती हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप उसे मारे, और कोई बात नहीं है। आस्तिक ने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो। अरुणिमा जो अब तक अपने बाजू को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, आस्तिक के सवाल पर हैरानी से उसे देखने लगती है। अचानक से आस्तिक ने अपना सवाल बदल दिया और वो उसे इस बात का जवाब मांग रहा है कि वो उससे प्यार क्यों नहीं करती है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं।